جلالدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہرات کے حاکم ہرات کا نواب بڑا سخی اور رعایا پرور تھا، اس کی رعیت اس سے بہت خوش تھی، اس کے 500 غلام تھے جو اس کے بڑے وفادار تھے، اور نواب ان سب کو اپنی اولاد کی طرح خوش رکھتا تھا اور بہترین لباس ان کو پہننے کے لیے دیتا تھا، بہترین جوتے اور بہترین غذا ان کو دی جاتی تھی۔ ایک دن یہ غلام بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک غریب و مفلس مسکین و نادار شخص کی ان غلاموں پر نظر پڑی تو اس کے منہ سے شکوے کے یہ کلمات نکلے، معاذ اللہ۔ اس نے کہا، یا اللہ، میرے تن بدن پر تو کپڑا بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ملتا اور میرا برا حال ہے، اور تو میرا خدا ہے، تو ذرا عماد الملک سے بندہ پروری سیکھ، معاذ اللہ، کہ دیکھ اس نے اپنے غلاموں کو کس طرح ناز و نعم میں پالا ہے اور تو نے اپنے بندے کو کس طرح تکلیف میں رکھا ہے۔ اس کے منہ سے یہ کفریات نکلے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ غربت جو ہے فقر، یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ بعض اوقات جوہلا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کو بڑے ٹھاٹ ہے اور پتہ نہیں ہماری کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں اور نعوذ باللہ ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی شان میں لوگ بے باکانہ کلمات کہہ کر دولت سے تو پہلے ہی خالی ہوتے ہیں، ایمان سے بھی خالی ہو جاتے ہیں، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ خیر، تو اس نے بھی یہ کفریات بک دیے غلاموں کے ٹھاٹ دیکھ کر۔ خیر، جب کچھ وقت گزرا تو اب بادشاہ کے زوال کے دن آئے، جیسے کہ ہمارے اپنے ٹھاٹ سے کرسی پر براجمان ہوتے ہیں اور خوب واہ واہ ہوتی ہے اور زندہ باد ہوتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد زوال کے اسباب ہو جاتے ہیں اور لوگ پھر احتجاج شروع کر دیتے ہیں اور آخر کار کرسی کھینچ کر ہٹا لی جاتی ہے اور وزیر صاحب پھر روڈ پر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے بادشاہ، وزیر اعظم، صدر بعض اوقات سریوں کے پیچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات پھانسی پر بھی لٹک جاتے ہیں۔ تو یہ زوال کے دن آتے ہیں، تو بادشاہ پر بھی زوال کے دن آئے، اور اس کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے اس نواب کو نہ صرف معزول کر دیا بلکہ قید میں ڈال دیا، اور اس کے سبب سے اس کے جتنے بھی غلام تھے 500 ان سب کو بھی قید کر دیا، اور ان سے راز اگلوانے کے لیے غلاموں سے کہ تمہارے نواب نے خزانہ کہاں کا رکھا اور کدھر دفن کیا، اسے خوب ان کی پٹائی کروائی، بہت مارا، بہت مارا، جیسے کہ مجرموں کو یا جاسوسوں کو مارا جاتا ہے ان سے بھید حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال طرح طرح کے ٹیکنک سے ان کو مارا گیا اور شکنجے میں کس کس کر ان سے راز معلوم کیے گئے، لیکن 500 میں سے ایک غلام نے بھی اپنے آقا کی بے وفائی نہیں کی، کسی نے بھی راز نہیں بتایا، حالانکہ سب کو پتا تھا، لیکن سب کے سب خاموش رہے اور ان کے منہ پر تالا لگا رہا، کچھ بھی نہیں بولے، اور انتہائی سخت تکالیف انہوں نے اپنے آقا کی خاطر برداشت کی۔ اس غریب آدمی نے جس نے کفریات بکے تھے، اس نے جب یہ حالات دیکھے تو حیران ہو گیا اور اس کو غیب سے ایک آواز سنائی دینے لگی کہ دیکھ، تو ان سے بندہ بننا سیکھ، ہزاروں تکلیفیں برداشت کر کے بھی وہ اپنے مالک کو نہیں بھولے اور اس سے بے وفائی انہوں نے نہیں کی، ایک تو بھی اگر ذرا سی تکلیف آ جائے تو اپنے پالنے والے پروردگار کا شکوہ شروع کر دیتا ہے، اور اس کے نام پر اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے بے وفائی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ اے بے باکی کے ساتھ کہنے والے، کہ الہی بادشاہ سے بندہ پروری سیکھ، پہلے تو بادشاہ کے غلاموں سے بندہ بننا سیکھ۔ میرے سائی بھائیوں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حکایت میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ عبرت کے بے شمار مدنی پھول سجا دیے ہیں اور ان لوگوں کے کان پکڑے ہیں کہ جو دوسروں کا سکھ چین دیکھ کر اپنی تکالیف کا شکوہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے وہ مالک و مختار ہے، کسی کو مالدار کرے، کسی کو نادار کرے، کسی کو کمزور رکھے، کسی کو طاقتور رکھے، کسی کو بادشاہ بنائے، کسی کو فقیر بنائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو بندے کا کام صرف بندگی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ بے نیازی میں سر نیاز جھکائے رکھنا ہے، شکوا کرنا اس کا کام نہیں۔ اور یہ کہ جس کو نعمتیں دی اس سے حساب بھی تو بہت سخت ہے نا، دنیا میں بھی بسا اوقات سخت ہے اور آخرت میں بھی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ غلام جو ناز کے پالے ہوئے تھے، لیکن دنیا ہی میں ان پر امتحان کیسا پڑا، لیکن انہوں نے وفا بھی کی، لاکھ مار کھائی لیکن راز افشا نہیں کی۔ تو اس لیے دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر دل میں جلنا نہیں چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے کہ جن کو دنیا میں نعمتیں زیادہ ملی ان کے ساتھ امتحان بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی سرمایہ داروں کو آپ دیکھ لیجئے، غریب جو ہوتا ہے سرمایہ دار سے چڑھتا ہے، कि मैं गरीब हूं, टूटी हुई साइकिल भी नसीब नहीं और ये लंबी लंबी कारों में घूमता है, इधर नौकरी भी नहीं मिल रही और इसके कई ममालिक में कारोबार फैले हुए। तो मेरे भाई, मालदार से गरीब ज्यादा सुखी है, सही बात यह है। ये बेवकूफ है, शिकवा करके दुखी हो रहा है अपने हाथों, वरना हकीकत में सुखी है। मालदार को मसाइल कितने होते, टैक्स वाले इसके पीछे होते हैं, इंतजामिया इसके पीछे होती है, फिर डाकू इसके पीछे होते हैं, कभी चिट्ठी आ रही है इतने लाख दे दो वरना तुम्हारे बच्चे को उठा जाएंगे, और कभी मौका पाकर डाकू उठा भी जाते और फिर रकम का मुतालबा करते हैं, भारी रकम का, और ना मिलने की सूरत में या किसी और वजह से मार के फेंक भी देते हैं, लाशें भी मिलती है। आए दिन मालदारों के घरों पे डकैतियां होती है, गरीबों के घर पे डकैतियां कब होती है, डकैतियां मालदारों के घर में होती है। और झुग्गी वाला अपना दरवाजा खुला रखकर सोया रहता है, गरीब आदमी फुटपाथ पर सोया रहता है, उसको कोई नहीं पूछता, और मालदार आदमी बाहर निकलता भी है तो उसके साथ गार्ड होते हैं उसके बाजू का। तो इसलिए जो दुनिया में सुखी है, दर हकीकत दर पर्दा वो दुखी है। अल्लाह ताला की हिकमतें बंदा नहीं समझ सकता सही मानो। अब जो बेचारा मालदार है उसको हाजमे की खराबी है तो खाना ही हजम नहीं होता, अब उसके काम की उसको दौलत क्या, सोने को चक्कू नहीं मार सकता। इससे तो गरीब अच्छा है जो छोला रोटी खाकर गुजारा तो कर सकता है, उसको लज्जत तो मिलती है, उसको लज्जत मिलती नहीं तो खाएगा तो फंस जाएगा, तरह तरह की बीमारियां बाजों का लग जाती। तो हर शख्स को अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है मैं सही हूं। अगर मेरे पास नेमतों की फिरावानी हुई तो हो सकता है कि मेरी पकड़ भी इतनी सख्त हो जाए, और कुरान पाक में ये भी तो है ना, तर्जमा कर सुलेमान, फिर बेशक जरूर उस दिन तुमसे नेमतों से पुरसिश होगी। तो कयामत के दिन सवालात भी इतने ही होंगे। और गरीब जो है, जो अभी बेवकूफी की वजह से चिढ़ता है मालदारों से, तो ये के मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा गरीब। सुभान अल्लाह, कह तो दिया लेकिन मालदारों से बड़ी चिड़ भी है, दौलत की हवस भी जाती नहीं, बॉन्ड की गड्डियों की गड्डियां रख के रखी है, किसी तरह मालदार बन जाए। गरीब की फजीलत पर सुभान अल्लाह कह दिया लेकिन हर एक के दिल में ये हवस चुटकियां ले रही है कि मैं किसी तरह मालदार बन जाऊं। तो सुभान अल्लाह, दिल की गहराई से निकले कि दुनिया की दौलत किसी को मुयस्सर आए उसको मुबारक, अल्लाह हमें इश्के रसूल की दौलत दे दे और इश्के रसूल की दौलत का मालदार बना दे, तो अल्लाह ताला जिस हाल में रखे खुश होना चाहिए। एक और दिलचस्प और सबक आमोद हिकायत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला ले लिखते हैं। बहुत सारी हिकायतें ये फर्जी होती हैं समझाने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चुनांचे आप फरमाते हैं, एक कुमार का गधा बेहद कमजोर और नहीफ और नजार था, भूख से उसकी हड्डियां निकल आई थी और जिस्म पर जा बजा जख्म भी थे। शाही अस्तबल के मोहतमिम ने एक मरतबा उस गधे को देखा तो कुमार से उसने कहा, गधे को देखकर शाही अस्तबल के रखवाल ने गधे को देखकर उसको तरस आया और कुमार से कहा कि भाई अपना गधा शाही अस्तबल में भेज दो, वहां जरा अच्छी अच्छी गिजाएं इसको खिलाई जाएंगी और दवा दारू भी कर देंगे, तो इस तरह आपका गधा जो है वो जरा सेट हो जाएगा। चुनाचे कुमार ने अपना गधा शाही अस्तबल में भेज दिया। गधा जब अस्तबल में पहुंचा तो वहां के ठाट देखकर हैरान रह गया, घोड़ों की खिदमत के लिए साइज खड़े हुए, इन्हें हर वक्त दाना और घास उम्दा पेश किया जाता है, दिन में दो बार इनकी मालिश भी होती है और भंगी भी रोजाना आते हैं जो इसकी इनकी लीद गोबर वगैरह उठा के ले जाते हैं और जगह भी साफ सुथरी कर देते हैं। गधे ने जब घोड़ों की ये खातिर मदारत देखी, ऐसा तो कभी इसने देखा नहीं था, तो उसकी जबान से भी शिकवा निकला और कहने लगा, या अल्लाह, एक ये घोड़े भी हैं जिनकी इस कदर इज्जत है और मसालेदार गिजाएं खाते हैं और एक मैं भी तेरी मखलूक हूँ जो भूख से मर रहा हूँ, तूने पेट तो दोनों ही को दिया है, फिर ये गधे और घोड़े का फर्क क्यों रखा है। वक्त आया, जंग छिड़ गई। अब जंग जो छिड़ गई तो शाही अस्तबल के सारे घोड़े मैदान जंग में भेज दिए गए और दूसरे रोज वो घोड़े जब मैदान जंग से वापस आए तो जख्मों से चूर चूर हैं और खून रिस रिस कर बहरा, चेहरे उतरे हुए, रौनक सारी गायब है और सबके बदन तीरों से छलनी हो रहे हैं। अब तबीब आ पहुंचे और लिटा लिटा कर बांध बूंद कर उनके बदनों से तीर निकाले। गधे ने जब घोड़ों की ये तकलीफ का मंजर देखा तो वही पुकार उठा के, या अल्लाह मेरी खता माफ कर दे, मैंने जो कुछ कहा मेरी भूल थी, या अल्लाह मुझे ये शाही अस्तबल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जल्दी निकाल दे, मैं अपने कुमार के पास ही अच्छा हूँ, मुझे कूड़ियों पर और कचरा कुंडी के ढेर पर चरना मंजूर और भूख से मरना मंजूर है, मगर यहाँ के शाही घास और दाने को तो मेरा दूर से ही सलाम। समझ गए ना कि दुनिया की बता आसाइश की वजह से गधा, पहले तो मतलब उसने शिकायत कर दी, शिकवा कर दिया कि ये भी पेट वाला मैं भी पेट वाला और दोनों में फर्क क्यों, लेकिन जब इसने देखा ना कि जिसको आसाइश ज्यादा होती है उसकी आजमाइश भी ज्यादा होती है, तब इसने कान पकड़ लिया कि नहीं वाकई मैं जिस हाल में हूं बस मैं सही। तो इसीलिए मेरे सही भाइयों, आप अगर गरीब हैं तो गुर्बत में अच्छे हैं, अमीर हैं तो अल्लाह करे आपको अपनी इस अमारत पर गुरूर तकब्बुर ना रहे,
और आपको आजजी नसीब हो जाए। अगर मैं कह दूं कि अल्लाह आपको गरीब कर दे तो कहीं कुछ लोग उठ के चले जाएंगे, ये बद्दुआ भी देता है या बुला के। तो इसलिए मैं ऐसी दुआ आपको नहीं करता, बद्दुआ नहीं है, मैं ऐसी दुआ नहीं करता आपके लिए कि कहीं आपको शैतान वसवसे डाले। बस मेरी तमन्ना ये होती है कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, मुझे तो कम से कम मालदार ना ही करे, बस किसी का मोहताज ना करे, कर्जदार ना करे, और आप में से जो चाहते हैं उसको अल्लाह ताला अता करे। तो ये कि जो जिस हाल में उसमें मुझको खुश रहना चाहिए कि अगर दुनिया में तकलीफें हैं भी तो आखिरत में राहत है। जैसा कि बाद रिवायतों से पता चलता है, खुलासा ये कि ऐसा शख्स जिसने दुनिया में हमेशा दुख देखा होगा, बेरोजगार भी यही होगा तो बे औलाद भी यही होगा, तो तरह तरह के अमराज में शिकार भी यही होगा, हर तरफ उसकी दुश्मनियां होंगी, पड़ोसी भी इसी को तंग कर रहे होंगे, केस भी इसके खिलाफ ही बन रहे होंगे, पुलिस भी इसी के पीछे लगी होगी, है मिसाल के तौर पर हर तरह से तकलीफों और मुश्किलों में घिरा हुआ और सख्त टेंशन और घबराहट का शिकार, और दुनिया में इसने कभी कोई सुख देखा ही नहीं होगा, जब से आंख खोली दुखी दुख देखा। तो ऐसा शख्स जब दुनिया से रुखसत होगा, मुसलमान शर्त है, ऐसा मुसलमान जब दुनिया से रुखसत होगा और उसे जन्नत का एक झोंका देकर पूछा जाएगा कि भाई तुमने कभी कोई दुख भी उठाया, तो वो जन्नत का एक झोंका अपने अंदर ऐसी तासीर रखता है कि वो पुकार उठेगा, खुदा की कसम मुझे तो पता ही नहीं कि दुख होता कैसा है। इन्हें जन्नत का एक झोंका पाकर वो सारे दुखड़े भूल जाए, मुसलमान साबिर मुसलमान सारे दुखड़े अपने भूल जाएगा, तो जो कुछ जन्नत के एक झोंके में है वो दुनिया की किसी राहत में नहीं है। अब एक काफिर की मिसाल दी जाती है हदीसों में कि इसने कभी दुख नहीं देखा, हमेशा सुख देखा। मालदार भी ये तो साहिब इख्तदार भी ये तो ताकतवर भी ये तो फनकार भी ये, हर सुख इसने गोया देखे, हर सुख देखे दुख कभी नहीं देखा। ऐसे काफिर को मरने के बाद जब जहन्नम का एक झोंका देकर पूछा जाएगा कि मियां कभी तुमने सुख भी देखा, तो बेसाख्ता पुकार उठेगा, खुदा की कसम मुझे तो पता ही नहीं कि सुख होता कैसा है, मैं तो इतनी तकलीफ में, जहन्नम के एक झोंके ने उसके सारे सुख भुला दिए। तो क्या सुखी लोगों को देखकर जलते रहना, जन्नत का इंशाल्लाह झोंका आ जाएगा तो सारे हम दुनिया के दुखड़े भूल जाएंगे। तुम्हारा लिए कि मेरे सही भाइयों, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उसी में खुश रहना चाहिए और इससे घबराना नहीं चाहिए। Yeah.